15 अगस्त दिन भर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपने भाषण में बलूचिस्तान, गिलगित और पीओके का नाम लिया।
ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।
पाकिस्तान ने कड़ी आलोचना की, लेकिन साथ ही भारतीय विदेश सचिव को बातचीत के लिए बुलाया। उधर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया कि उनके भाषण में जजों का कोई जिक्र नहीं।
मैं भी ये उम्मीद कर रहा था कि इंसाफ के बारे में कोई शायद बात होगी, कोई की जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में बात होगी,
खबरें होगी ओलंपिक से भी। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। भारत के 70वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय से ही सशक्त देश का निर्माण हो सकता है। हाल में दलितों के खिलाफ हुई हिंसा का उन्होंने स्पष्ट जिक्र किए बिना कहा कि सामाजिक बुराइयों से लड़ना होगा। साथ ही बढ़ती महंगाई पर कहा कि पहले के मुकाबले महंगाई की रफ्तार को रोकने में हमारी सरकार ने कामयाबी पाई है और महंगाई पर 2022 तक किसान की आमदनी को दोगुना करना मेरा सपना है। पाकिस्तान ने सोमवार को भारत को कश्मीर पर बातचीत का न्योता देते हुए कहा कि इस मुद्दे को सुलझाना दोनों देशों का अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है। पाकिस्तानी विदेश सचिव एजाज चौधरी ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले को बुलाया और उन्हें भारत के विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकर के लिए चिट्ठी सौंपी। इस पत्र में जयशंकर को कश्मीर मुद्दे पर बातचीत के लिए पाकिस्तान आने का न्योता दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारी बाढ़ के चलते लुसियाना को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। इस घोषणा के बाद आपदा प्रभावित इलाकों में सहायता पहुंचाई जाएगी। बाढ़ की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई और बाढ़ में फंसे 20,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। हजारों लोगों को शरण स्थल में सोना पड़ा। स्थानीय पत्रकार डैनी हैटमैन ने बीबीसी को बताया, कई रास्ते बंद हो गए जिसमें हाईवे भी शामिल है। कुछ लोग तो बचाए जाने पर हाईवे पर 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक फंसे रहे। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। हमें यहाँ खोले गए शरण स्थल में जगह मिली है। बंद रास्तों के चलते बचाए गए लोगों को खाना पीना पानी कुछ भी मुहैया करवाना एक चुनौती की तरह है, लेकिन हमें हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया जा रहा है और खाना पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पिछले महीने हुए नाकाम तख्तापलट की जांच कर रही तुर्की पुलिस ने इस्तांबुल की 3 अदालतों में छापे मारे। ये छापे 170 से ज्यादा अभियोजन पक्ष और न्यायिक कर्मचारियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद डाले गए। हिरासत में लिए गए लोगों से तख्तापलट के मास्टरमाइंड अमरीका स्थित मौलवी फतहुल्ला गुलेन का समर्थन करने के बारे में पूछताछ की जाएगी। जाम्बिया के राष्ट्रपति एडगर लुंगू पुनर्चुनाव में जीत गए हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उन्होंने गुरुवार को हुई वोटिंग में 50% से ज्यादा वोट हासिल किए और अपने प्रतिद्वंद्वी हकाय हिंदे हिचिलेमा को हरा दिया। हकाय हिंदे हिचिलेमा की पार्टी पर धोखाधड़ी के आरोप हैं। दक्षिण अफ्रीका की अदालत ने एक महिला को 20 साल पहले नवजात शिशु के अपहरण और उसे अपना बताकर पालने के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई है। जेफिनी नर्स को 20 साल पहले उसकी मां के बिस्तर से छीन लिया गया था। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की सरकार ने कश्मीर पर बातचीत करने के लिए भारतीय विदेश सचिव को आमंत्रित किया है। इस पर बात करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन आज पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्पष्ट शब्दों में बलूचिस्तान, गिलगित और पीओके का मुद्दा उठाया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ देशों में आतंकवाद के महिमा मंडन का काम किया जा रहा है। रविवार को पाकिस्तान ने कहा था कि वो अपने जश्न आज़ादी को कश्मीर की आज़ादी के नाम करना चाहता है। सलमान रवि की रिपोर्ट।
बादलों के साए और हल्की सुहानी हवा के बीच दिल्ली के लाल किले में जमा सुरक्षा बल के जवान राष्ट्र ध्वज को सलामी देने के लिए कतारबद्ध हैं। ये तीसरा मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया, मगर इस बार उनका संबोधन अब तक सबसे लंबा था, जिसमें उन्होंने लगभग हर पहलू को छुआ। हाल में दलितों के खिलाफ हुई हिंसा का जिक्र किए बिना प्रधानमंत्री ने देश की विविधता का हवाला देते हुए कहा,
एकता का मंत्र हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, जिस देश की 100 से ज्यादा भाषाएं हो, सैकड़ों बोलियां हो, अनगिनत पहनाव हो, अनगिनत जीवन पद्धतियां हो, उसके बाद भी सदियों से यह देश एक रहा है, उसका मूल कारण हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम सम्मान देना जानते हैं।
जैसा उम्मीद की जा रही थी, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बलूचिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और गिलगित में रहने वाले लोगों का मुद्दा भी उठाया।
मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, मगर उन्होंने पेशावर में हुए चरमपंथी हमले के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि भारत में जब भी चरमपंथी हमला होता है तो वहां जश्न मनाया जाता है।
जब पेशावर में निर्दोष निर्दोष बालकों का रक्त बहाया गया था, यह हिंदुस्तान संसद की आंखों में आंसू थे, भारत की हर स्कूल रो रही थी। आतंकवाद से मरने वाला पेशावर का बच्चा भी हमें दर्द देता था, दुख देता। यह है हमारी मानवता से पली बड़ी संस्कृति की प्रेरणा कि जब आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करने का काम हो रहा है, जहां आतंकवादी घटना में निर्दोष लोग मारे जाएं तो जश्न मनाए जाते हैं। ये कैसा आतंकवाद से प्रेरित जीवन है, कैसे आतंकवाद से प्रेरित सरकारों की रचनाएं हैं।
उन्होंने माओवाद और आतंकवाद की चर्चा करते हुए कहा कि भारत का नौजवान हिंसा को कभी सहन नहीं करेगा।
जंगलों में माओवाद के नाम पर, सीमा पर उग्रवाद के नाम पर, पहाड़ों में आतंकवाद के नाम पर, कंधे पर बंदूक लेकर के निर्दोषों को मारने का खेल चला जा रहा है। 40-40 हो गया, ये धरती माता रक्त से रंजित होती गई है, लेकिन इस आतंकवाद को रास्ते पर जाने वालों ने कुछ नहीं पाया। मैं उन नौजवानों को कहना चाहता हूं, ये देश हिंसा को कभी सहन नहीं करेगा, ये देश आतंकवाद को कभी नहीं सहन करेगा, ये देश आतंकवाद के सामने कभी झुकेगा नहीं, माओवाद के सामने कभी झुकेगा।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और कहा कि अगर वो एक एक कर इन उपलब्धियों को गिनवाने लगे तो उन्हें हफ्ते भर तक बोलते रहना पड़ेगा, मगर उनका कहना था कि अपनी सरकार की पहचान बनाने से ज़्यादा हिंदुस्तान की पहचान बनाने की उन्हें फिक्र है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने सर झुकाकर पुरानी सरकारों की योजनाओं को आगे भी बढ़ाया है। सलमान रावी, BBC, दिल्ली।
नरेंद्र मोदी के इस आक्रामक रुख का जवाब देते हुए पाकिस्तान ने भारत को कश्मीर पर बातचीत का न्योता दिया है और कहा है कि इस मुद्दे को सुलझाना दोनों देशों का अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है। पाकिस्तानी विदेश सचिव एजाज चौधरी ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले को बुलाया और उन्हें भारत के विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकर के लिए एक चिट्ठी सौंपी है और इस पत्र में जयशंकर को कश्मीर मुद्दे पर बातचीत के लिए पाकिस्तान आने का न्योता दिया गया है। आइए सीधे चलते हैं इस्लामाबाद, BBC संवाददाता हारून रशीद के पास। हारून, बताएं क्या डिटेल्स हैं आपके पास?
देखें, जो पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय है उसने तो बड़ा मुख्तसर सा एक बयान जारी किया है कि जो भारत के यहाँ पर हाई कमिश्नर हैं उनको ये इनविटेशन दी गई है, फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान के जो हैं उन्होंने दी है ताकि कश्मीर के मुद्दे पर बात हो सके। इस पर ज़्यादा बात तो नहीं की है, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज तकरीर की है उस पर रिएक्शन जो है वो सरताज अजीज़ ने अलग एक बयान जारी किया है और उसमें काफ़ी کرٹیسزم کی ہے مودی صاحب کی کہ وہ جو بلوچستان کا ایشو کی بات کرتے ہیں یا جو کشمیر کے اندر بھارت کے اندر جو حالات ہیں ان کو اگنور کر رہے ہیں اور سارا جو ایلیگیشنز ہیں اور ملبہ جو ہے وہ پاکستان پر ڈال رہے ہیں, تو یہ درست پالیسی نہیں ہے اور اس سے حالات میں کوئی سدھراؤ نہیں آئے گا.
تو یہ ایک طرف زبردست کرٹیسزم اور دوسری طرف کشمیر پر بات چیت کرنے کے لیے نیوتا, بلو ہاٹ بلو کولڈ, آپ کو کیا لگتا ہے یہ الگ قسم کی ڈپلومیسی ہے؟
جی بالکل, کافی سرپرائزنگ ہے پاکستان کی طرف سے یہ انویٹیشن ایک ایسے حالات میں جبکہ بھارت مسلسل یہ کہتا آیا ہے کہ کشمیر کا جو مدعا ہے وہ انٹرنل میٹر ہے اور اس پر وہ پاکستان سے کبھی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا, اور جب بھی دونوں دیشوں کے پردھان منتری آپس میں ملتے ہیں تو جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آتی ہے اس میں بھی بھارت کی کوشش ہوتی ہے کہ کشمیر کا ذکر نہ ہو, صرف آتنکواد پر بات ہو. پاکستان ہمیشہ کشمیر کا ایشو لے کر چلتا ہے, تو ایسے میں ان حالات میں جب کہ کافی ٹینشن بھی ہے اور ایک دوسرے پر جو بیانات کی جنگ ہے وہ بھی جاری ہے, اس انویٹیشن کی مقصد کیا ہے اور اس سے کیا پاکستان حاصل کرنا چاہتا ہے؟ لگتا نہیں ہے یہاں پر لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس پر کوئی زیادہ بات آگے بڑھ پائے گی, لیکن ایک ڈپلومیٹک موو ہے جو پاکستان نے کیا ہے, اب دیکھنا یہی ہے کہ بھارت اس کا جواب کیسے دیتا ہے.
بہت بہت دھنیواد آپ کا ہارون رشید. وپکش نے جہاں پردھان منتری کے بھاشن کو سادھارن بتایا ہے, وہیں بھارت کے مکھیہ نیادھیش ٹی ایس ٹھاکر نے کہا ہے کہ پردھان منتری نریندر مودی نے لال قلعے سے اپنے بھاشن میں ججوں کی نیوکتی کے مدعے کا کوئی ذکر نہیں کیا, جس سے انہیں نراشا ہوئی ہے. جس سمے جسٹس ٹھاکر نے یہ بات کہی اس سمے قانون منتری روی شنکر پرساد بھی موجود تھے. جسٹس ٹھاکر نے کہا کہ وہ اپنے کریئر کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں انہیں اپنے من کی بات کہنے میں کوئی پرہیز نہیں ہے. امر شرما کی رپورٹ.
آج آپ نے ہمارے بہت ہی پاپولر اور بڑے دیش پریہ پرائم منسٹر صاحب کا بھاشن ڈیڑھ گھنٹہ سنا اور لا منسٹر صاحب کا بھی سنا. میں بھی یہ امید کر رہا تھا کہ انصاف کے بارے میں کوئی شاید بات ہوگی, کوئی ججز کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں بات ہوگی. وہ دیش میں جس طرح انگریزوں کے وقت میں تو شاید 10 سال میں ایک مقدمے کا فیصلہ ہو جاتا تھا, اب وہ نہیں ہو رہا. اب تو کیس اتنے بڑھ گئے, مقدمے اتنے بڑھ گئے, لوگوں کی امیدیں بھی بڑھ گئیں کہ بہت مشکل ہو رہا ہے. اس لیے میں نے بار بار یہ گزارش کی ہے کہ ذرا اس کی طرف بھی توجہ دیجیے.
یہ درخواست ہے دیش کی سب سے بڑی عدالت کے مکھیہ نیادھیش تیرتھ سنگھ ٹھاکر کی دیش کے پردھان منتری نریندر مودی سے. دیش میں ججوں کی کمی کی وجہ سے نیائک پرکریا کتنے سنکٹ سے گزر رہی ہے, اس کا اندازہ جسٹس ٹھاکر کی پی ایم مودی سے کی جا رہی اپیل سے لگایا جا سکتا ہے, جس میں مکھیہ نیادھیش کی پیڑا اور نیائک پرکریا کی بے بسی سامنے نظر آ رہی ہے. موقع تھا سوتنترتا دیوس پر سپریم کورٹ میں ہوئے کارکرم کا.
میں صرف اس موقع پر اتنا کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ غربت ہٹائیے ضرور کریے, لوگوں کو روزگار دیجیے وہ بھی کریے, دیش کو اکٹھا رکھیے, دیش میں جناب بڑی اسکیمز بنائیے, لیکن دیش واسیوں کے لیے انصاف کے لیے بھی کچھ سوچیے. گل پھینکے اوروں پر, گل تو پھول ہوئے نا, گل پھینکے اوروں پر, بلکہ سمر پھل بھی پھینکے تم نے بھائی, دوسروں کے اوپر پھول تو پھینکے پھل بھی پھینکے. اے ابرے کرم اے بہرے سکھا کچھ تو ادھر بھی.
نیادھیش نے اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کی جس کا مطلب ہے تم نے دوسروں کو پھول اور پھل دیے, کچھ ہماری طرف بھی بھیج دو. اس سے پہلے جسٹس ٹھاکر نے کہا کہ سب کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے, بہت لوگوں نے اب تک اپنی قربانی دی ہے سال 1948, 1962, 1971 اور کارگل میں. مکھیہ نیادھیش نے کہا کہ یہ چنتن کرنے کا دن ہے کہ ہم نے کس حد تک ان دیوانوں کی قربانی کو سمجھا, سچائی میں تبدیل کیا. چیف جسٹس نے سرکار سے غریبی اور بے روزگاری پر دھیان دینے کی اپیل کی. انہوں نے کہا کہ غریبی ریکھا ایسی بنائی گئی ہے جیسے آدمی کو صرف 2 وقت کی روٹی چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر اس غریبی ریکھا کو تھوڑا سا بڑھا دیں تو 50% سے زیادہ آبادی غریب کہلائے گی. جسٹس ٹھاکر نے کہا کہ بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ ایم اے پاس لوگ چپراسی تک کی نوکری کے لیے جوجھ رہے ہیں. کارکرم میں موجود کیندری قانون منتری روی شنکر پرساد نے نیائے پالیکا کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اچھا جتائی.
یو ٹاکڈ اباؤٹ ویکینسی فائن, وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. न्यायपालिका में 4000 से ज्यादा पद खाली हैं, जो मुझे भी चिंतित करती हैं। हमें न्यायपालिका के साथ मिलकर काम करना है। हमें एक टीम की तरह संवाद और आपसी तालमेल बैठाना होगा, जिससे हम न्याय की प्रक्रिया को सुचारू कर सकें।
इससे पहले इसी साल अप्रैल में मुख्य न्यायाधीश एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जजों की कमी और मुकदमों के लंबित होने की बात करते हुए भावुक हो गए थे।
ये थी अमर शर्मा की रिपोर्ट। मैंने थोड़ी देर पहले कानूनी मामलों के जानकार सूरज सिंह से संपर्क किया और पूछा कि आमतौर से भारत के मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस भाषण पर इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करते हैं, इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं आप?
देखिए रेहान साहब, इसमें चीजें अब बदल रही हैं। पहले ये भी नहीं होता था कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की इतनी बड़ी डिबेट फ्रंट पेजेस पे अखबारों में हो या टीवी में हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इंटरव्यू लिया जाए। तो चीजें बदल रही हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रोल बदल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का रोल बदल रहा है तो उसमें अगर 40% वैकेंसीज आपकी हैं हाई कोर्ट पेजेस की, 470 से भी ऊपर वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, और सबको चिंता है कि हमारे यहाँ केसेस को डिसाइड करने में बहुत समय लग जाता है, क्वांटिटी और क्वालिटी जजमेंट्स की बढ़नी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जब 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री जी सारे राष्ट्र को विश्व को संबोधित कर रहे हैं, उसमें न्याय प्रक्रिया के बारे में लोगों के विश्वास कैसे और जमे और बढ़े उसके बारे में ना बोलना या जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके बारे में कुछ ना कहना, एक तरह से चीफ जस्टिस का कहना यहाँ सही है क्योंकि वस्तुतः ये इम्पोर्टेंट इशू है, और अगर आपको 5 इम्पोर्टेंट इशू भारत की डिस्कस करनी तो उसमें किस तरह से हमारी न्यायिक प्रक्रिया को सबल बनाया जाए उसमें एक होगा।
लेकिन सिंह साहब, जिस तरह से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में ये जो पब्लिक स्पैट हो रहा है पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, आपको लगता है ये दोनों के बीच स्पैट है या जस्टिस ठाकुर और नरेंद्र मोदी के बीच में है?
नहीं, ये जस्टिस ठाकुर और नरेंद्र मोदी के बीच में तो व्यक्तिगत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मैं चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ठाकुर साहब को काफी समय से जानता हूँ। वो तो बहुत ही सहृदय व्यक्ति हैं, कभी किसी के प्रति वैमनस्य रखते ही नहीं है। इसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी जो है व्यक्तिगत तौर पर कभी भी किसी के खिलाफ नहीं होते, राष्ट्र के लिए हित में जो बात होती है वही सोचते हैं, तो व्यक्तिगत मामला तो ये है ही नहीं। मामला है ये इंस्टीट्यूशनल, और इंस्टीट्यूशनल भी ऐसे कि 1993 तक एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते थे जजेस, तो ये नहीं 1950 में हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी और शुरू के 43 साल तक जजेस सिर्फ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओपिनियन सिर्फ होती थी एडवाइजरी। 1993 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस की ओपिनियन एडवाइजरी नहीं है बल्कि मैंडेटरी है, उसको मानना पड़ेगा। और फिर 1998 से हमारा ये कॉलेजियल सिस्टम आया जो अब चल रहा है कि सीनियर मोस्ट 5 जजेस डिसाइड करेंगे जजमेंट, जजेस कैसे अपॉइंट किए जाएं, ट्रांसफर किए। लेकिन ये इस तरह की डिबेट बड़ी हेल्दी डिबेट है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि मिनिस्टर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो इलेक्शन से आते हैं, जजेस अपॉइंटमेंट होते हैं तो उनके क्या विचार हैं, क्या वो सोचते हैं, जैसे अमेरिका में डिबेट होती है, सेनेट कमेटी जो है उसको बहस करती है, ठीक इसी तरह से अब न्यायपालिका में और कार्यपालिका में क्या उचित संबंध होने चाहिए, जनता का इंटरेस्ट किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, संविधान इसके बारे में क्या कहता है, ये सारे विषय जो है आज पब्लिक में डिस्कस हो रहे हैं, ये तो डेमोक्रेसी के लिए एक हेल्दी परंपरा है।
ये थे कानूनी मामलों के जानकार सूरज सिंह।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। उधर कश्मीर में आज एक चरमपंथी हमला हुआ है जिसमें एक सुरक्षा अधिकारी सहित 2 चरमपंथी मारे गए हैं। थोड़ी देर पहले मैंने श्रीनगर फोन कर रियाज मसरूर से इस घटना का विवरण मांगा।
जी, पुराने श्रीनगर में जो ऐतिहासिक जामा मस्जिद है उसके सामने वाला इलाका जो है नौहटा, वहाँ पे पुलिस और CRPF के प्रवक्ताओं ने अलग अलग वक्तव्य में कहा है कि वहाँ पे आज सुबह 3 बजे फायरिंग हुई, 3 मकानों से 3 दिशाओं से फायर आ रहा था। तो काफ़ी लंबी मुठभेड़ के बाद फिर CRPF और पुलिस ने दावा किया कि उसमें 2 चरमपंथी मारे गए हैं जिनकी शनाख्त अभी तक नहीं की गई है, लेकिन इस मुठभेड़ में CRPF के एक ऑफिसर की भी मृत्यु हुई है। और इसके साथ ही जो उत्तरी कश्मीर है वहाँ का जो उड़ी सेक्टर है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ है, तो वहाँ पे सेना ने दावा किया कि दो घुसपैठियों को एक मुठभेड़ के दौरान मारा गया है।
आज वैसे स्वतंत्रता दिवस भी था, पूरे कश्मीर में क्या क्या गतिविधियां रही, महबूबा मुफ्ती कुछ बोली?
स्वतंत्रता दिवस तो था लेकिन ये कई वर्षों में पहली बार है कि मुकम्मल कर्फ्यू और नाकाबंदी के बीच ये स्वतंत्रता दिवस एक ऑफिशियल समारोह बन के रह गया जिसमें कोई सिविलियन पब्लिक नहीं थी। महबूबा मुफ्ती बाकायदा उपस्थित थी लेकिन जो अपोजिशन के दो बड़े दल हैं, एक तो स्थानीय कांग्रेस है, प्रदेश कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों ने इस समारोह का बॉयकॉट किया और एक आज़ाद विधायक हैं इंजीनियर रशीद, उन्होंने भी बॉयकॉट किया, बल्कि उन्होंने लाल चौक में एक मार्च किया काले कपड़े पहनकर और इन जो मृत्युएं हुई हैं इन 35-37 दिनों के दौरान तो उसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया। महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में कहा कि बंदूक और गोली से कभी भी न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन इस समारोह में परेड लेने से पहले ही एक अजीब सी घटना घटी जब उन्होंने भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहा, जो ही उन्होंने रस्सी को खींचा तो ध्वज जो है वो कट के नीचे गिर गया, तो उसके तुरंत बाद उस ध्वज को दोबारा उठाया गया और रस्सी बांध के उसमें 2-5-7 मिनट तक एक ड्रामाई स्थिति पैदा हो गई। उसके बाद ध्वज तो लहराया गया लेकिन कुछ घंटों के बाद प्रशासन ने इसमें जो है जांच के आदेश दिए कि ये कहीं कोई सैबोटाज तो नहीं था।
ये थे श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर। आज सोमवार है और आज के दिन आपको इंतजार रहता है अपनी चिट्ठियों का। आपके पत्रों के साथ हैं राजेश जोशी और वंदना।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और मेरे साथ हैं वंदना।
जी बिल्कुल, नमस्कार।
वंदना का भी नमस्कार और वंदना के हाथ में आज है ईमेल, क्योंकि आज 15 अगस्त है और पोस्ट ऑफिस की छुट्टी है, हमारे पास कोई चिट्ठियां नहीं है, लेकिन जिन्होंने चिट्ठियां भेजी हैं या पोस्टकार्ड भेजे हैं वो हमारे श्रोता बुरा न माने, हमारा अगला कार्यक्रम होगा आपकी राय यानी बृहस्पतिवार को, उसमें हम सिर्फ चिट्ठियां लेंगे।
पहला जो ईमेल है वो है पूर्वी सिक्किम से सिंगताम संजीव कुमार हैं, ये लिखते हैं कि इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस कार्यक्रम की शुरुआत होती है नेता बोले अफसर बोले नहीं बोल सके तो बस आप, फिर भी 13 अगस्त के कार्यक्रम में सिर्फ 4 श्रोताओं के कॉल लिए गए, उनमें से भी सिर्फ 3 से ही संपर्क हो पाया। आप कार्यक्रम का नाम बदलकर नेता या विशेषज्ञ बोल कर दीजिए तो ठीक रहेगा।
अरे साहब, संजीव कुमार जी आपने इतनी दूर सिक्किम से हमें चिट्ठी लिखी है और वाकई अगर ये कार्यक्रम श्रोताओं का है और इसे श्रोताओं का कार्यक्रम रहना है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी श्रोताओं की रहनी चाहिए। मैं 100% आपसे सहमत हूँ, लेकिन हम इसे बदलेंगे और आपको आने वाले दिनों में ये बदलाव महसूस होगा।
जी, और मलकापुर बुल्डाणा महाराष्ट्र से एहसान असगर हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया बोल में ऐसा आभास हो रहा था कि कश्मीरी पक्ष अकेला पड़ गया है,
कमज़ोर पड़ गया, यानी जो कश्मीर से हमारे श्रोता थे जो पार्टिसिपेट करने वाले थे प्रोफेसर, वो पूरी तरह उसमें अपनी बात नहीं रख पाई है, इन्होंने कहा है। उन्होंने अपनी बात कही, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी बात कही और श्रोता अपनी बात थोड़ा कम रख पाए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस स्थिति को हम बदलेंगे।
जी बिल्कुल। दूसरी जो कई ईमेल हैं वो हैं जो मार्कंडे कार्जू, उनके साथ जो इंटरव्यू हुआ था
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश,
तो कांकेर से नितेश पंत हैं, उन्हें ये इंटरव्यू पसंद आया, लेकिन सुहेल अख्तर जो हैं बरही जिला हजारीबाग से, उन्होंने कहा है कि इन्हें पसंद नहीं आई, उनके निजी जीवन पर बात होती तो बेहतर होता।
अलग अलग श्रोता हैं और अलग अलग श्रोताओं की अलग अलग राय है। दरअसल मार्कंडे काटजू को बुला करके उनसे इंटरव्यू करने का मकसद यही था कि एक तो बहुत विद्वान वो न्यायाधीश रहे हैं, दूसरी बात ये कि जिस भी मामले में वो अपनी राय जाहिर करते हैं उस पर कुछ न कुछ विवाद ज़रूर होता है और वो खुल के बोलते हैं, इसलिए हमने उनको बुलाया था। हाँ, ये बात बिल्कुल मार्के की है कि उनके अगर निजी जीवन पर भी कुछ बात होती, उनकी क्या शौक हैं, कैसे लिखते पढ़ते हैं, तजुर्बे क्या हैं, तो वो और अच्छा रहे।
इस बार राजेश जी पंजाब से भी 2 ईमेल आए हैं, थोड़े कम आते हैं वहाँ से।
हाँ, पंजाब से श्रोता ज़्यादा हैं वहाँ पे लेकिन लिखते कम हैं। क्या कहते हैं?
तो ये हैं फगवाड़ा पंजाब से नवतेज सिंह जसवाल, उन्होंने कहा कि हॉकी क्वार्टर फाइनल में आपके रिपोर्टर ने अपनी रिपोर्ट में एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया और इसे पहले भी राष्ट्रीय खेल को नजरअंदाज करते रहे हैं।
देखिए हमारे
हॉकी प्रेमी हैं ये।
जी हाँ बिल्कुल, और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नॉरिस प्रीतम जो इस वक्त रियो में हैं उनको या तो जानबूझ के या उनसे गलती हो गई हो, क्योंकि वो पिछले कई साल से 25-30 बरस से खेल कवर कर रहे हैं, कई ओलंपिक्स उन्होंने कवर किए हैं। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि आपकी बात उन तक पहुंचा दी जाएगी, वो ये कार्यक्रम सुनेंगे तो उन तक पहुंच जाएगी, और अगर ऐसी कोई गलती हुई है तो उसको नहीं दोहराया जाएगा।
जी बिल्कुल। और पंजाब से ही बलदेव सिंह ने लिखा है, गुरदासपुर से हैं, कि बीबीसी तटस्थ रूप से रिपोर्टिंग करता है लेकिन पिछले एक महीने से आप सिर्फ कश्मीर की ही बात कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और बलूचिस्तान पर भी रिपोर्ट करनी चाहिए।
जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अब जो खबर करने वाले लोग होते हैं उनकी मजबूरी ये होती है जहाँ खबर होती है वहीं की बात करनी पड़ती है। कश्मीर में पिछले एक महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है, बहुत ही असंतोष है, इसलिए कश्मीर ज़्यादा हमारे कार्यक्रमों में इस बीच आपको सुनाई दिया। जहाँ तक बात अपने बलूचिस्तान की, पाकिस्तान की कही, अगर वहाँ से खबर होती है तो हम उसे भी कवर करते हैं। आने वाले दिनों में आप गौर से सुनिएगा, बलूचिस्तान पर भी हमारे कुछ योजनाएं हैं, उस पर कार्यक्रम सुनेंगे आप।
जी, और ये 17 साल के हमारे श्रोता हैं सत्यम सिद्धार्थ बांका बिहार से, इनकी शिकायत है कि सिग्नल कमज़ोर होते हैं।
हाँ सिग्नल कमज़ोर होते हैं, ये शिकायत हमारे बहुत सारे श्रोता करते हैं। इन्होंने हालांकि इंडिया बोल की तारीफ भी की है कश्मीर के मुद्दे पर जो हुआ। मैं आपकी शिकायत को अपनी जो हमारी टेक्निकल टीम है लंदन में उस तक पहुंचा दूंगा और आपके एरिया में क्यों ऐसा हो रहा है इसकी तहकीकात करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आप 17 साल के हमारे नौजवान किशोर एक तरह से कहा जाए श्रोता हैं, आपसे बहुत लंबी पारी अभी बीबीसी की और आपकी चलने वाली है, इसलिए थोड़ा सा सब्र करेंगे
और तो इंटरनेट पर भी सुनते रहेंगे।
जी हाँ इंटरनेट पर सुनेंगे, अगर इंटरनेट की सुविधा है तो उस पर भी सुन सकते हैं, लेकिन रेडियो पर सुनना भी जारी रखें। फिलहाल समय बहुत कम है तो मैं चलते चलते श्रोताओं से इजाजत चाहूंगा।
नमस्कार।
और अब रियो ओलंपिक। आइए सीधे चलते हैं नॉरिस प्रीतम के पास रियो। सबसे पहले ये बताइए, नॉरिस पीटी उषा के बाद पहली बार ललिता बाबर किसी एथलेटिक्स प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची हैं। 3000 मीटर के स्टीपल चेज में उनका मुकाबला हो रहा है, अभी अभी समाप्त हुए, क्या खबर है आपके पास?
नॉरिस
से लगता है संपर्क टूट चुका है, हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा संपर्क स्थापित करने की। इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में आदेश गुप्ता हैं। आदेश, कुछ खबर मिल रही है 3000 मीटर स्टीपल चेज की?
जी देखिए, जो 3000 मीटर स्टीपल चेज की दौड़ थी वो ऐसा लगता है कि जहां तक भारतीय एथलीट की बात है तो वहां तो वो नहीं पहले तीन में शामिल है, क्योंकि जिस तरह से शुरुआती दौड़ लगाई थी और जिस तरह से
जेबेट जीत गई हैं जी। लेकिन भारतीय जो प्रतिद्वंदी थीं उनका पता नहीं है, वो पहले 8 में तो नहीं है, उसके बाद ही उनके बारे में कुछ पता चल पाएगा। इस बीच नॉरिस से संपर्क होने की कोशिश की जा रही है, संपर्क स्थापित हो गया है। नॉरिस 3000 मीटर स्टीपल चेज, नॉरिस अगर आप हमारी बात सुन पा रहे हो, 3000 मीटर स्टीपल चेज में लो, आज हमारा भाग्य बहुत ही खराब, दोबारा संपर्क टूटा। आदेश तैयार हैं, बताइए आदेश स्टूडियो में।
जी देखिए, जहां तक इस मुकाबले की बात की जा रही थी तो फाइनल में जरूर पहुंची, जैसा कि आपने कहा कि पीटी उषा के बाद थी, लेकिन निराशाजनक समाचार सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि ट्रिपल जंप में रंजीत महेश्वरी भी, जो उनके अपना ग्रुप था उसमें, वो 16.33 मीटर के साथ अंतिम स्थान पर रहे। सर्वनी नंदा 200 मीटर की दौड़ में 23.58 सेकंड का समय निकाल सकी।
ये बताइए बैडमिंटन से क्या खबर है?
देखिए बैडमिंटन से एक अच्छा समाचार है कि जो भारत के के श्रीकांत हैं वो आज यानो योर्गेंसन जो कि डेनमार्क के खिलाड़ी हैं उनसे कड़े मुकाबले के बाद 21-19 जीत गए, लेकिन उनका अगला मुकाबला बहुत ही कठिन है, लोही के चने चबाने होंगे सेमीफाइनल में जाने के लिए।
चलिए क्वार्टर फाइनल में तो पहुंचे
जी, लिंडन से मुकाबला,
लिंडन से मुकाबला, लेकिन एक बार हरा चुके हैं लिंडन।
जी हाँ बिल्कुल, इंडियन ग्रुप।
बहुत बहुत धन्यवाद आदेश आपका। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारत के 70वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय से ही सशक्त देश का निर्माण हो सकता है। पाकिस्तान ने सोमवार को भारत को कश्मीर पर बातचीत का न्योता देते हुए कहा कि इस मुद्दे को सुलझाना दोनों देशों का अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है। पाकिस्तानी विदेश सचिव एजाज चौधरी ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले को बुलाया और उन्हें भारत के विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकर के लिए चिट्ठी सौंपी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारी बाढ़ के चलते लुसियाना को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। बाढ़ की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। अब बाढ़ में फंसे 20,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की हेमंत कुशवाहा ने, रेहान फदल को, सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।